ओम शांति। कल की मुरली याद करूं, प्रश्न पूछता हूं उसका उत्तर देना है। मौज की जीवन बितानी है तो क्या करो, इसी से जोड़ो शब्द मौज और बोझ। मौज की जीवन बितानी है तो बोझ बाप को दे दो। बहुतों की जीवन मौज की जीवन नहीं है, मूंज की जीवन है। कंफ्यूजन, उलझन, क्या होगा कैसे होगा, ये जीवन है। तो पहली सुंदर बात थी बेफिक्र बादशाह बन जाओ। उसमें कुछ गहरी बातें भी थी। ज्ञान की जितनी किसी की आयु है, 2 साल है ना, कम 2 साल कम है ना। लोग सोचते हम लेट आ गए, बाबा ने क्या कहा, जब से ज्ञान की आयु है। बोलो किसने नोट किया, तब से जितने दिल तख्त नशीन बनकर रहे हैं उतना ही लंबा समय राज मिलेगा। राज में रहें या रॉयल फैमिली में रहें, एक ही बात होती है। राजा के बच्चे बने, उनके परिवार में आए, बहुत बड़ा रहस्य है। कौन बन सकते हैं दिल तख्त नशीन, जो देह अभिमान में नहीं आते। माताओं को अपने कौन से बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं जो दिल पे रहते हैं, आज्ञाकारी और अरे माताओं से पूछ रहा हूं, फॉलो मदर नहीं, मैं लौकिक बात कर रहा हूं। पहले कौन अच्छे लगते हैं दूसरों को, जो बहुत स्वीट हो, नम्रचित हो, प्रेम से भरपूर हो। आज्ञाकारी तो है ही, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हो, केयरफुल हो, काम धंधा जो भी उन्हें दिया जाए वो अच्छी तरह संभालते हो, वो प्यारे लगेंगे ना। किसी को बड़ा बिजनेस हो और 2 बच्चे हो और दोनों बच्चों ने बाप का बिजनेस अच्छी तरह संभाल लिया हो तो प्रिय लगेंगे ना। प्रिय माना दिल पे रहेंगे, तो बाप क्या करेगा, उनको दे देगा, होगा ना। यही भगवान के दिल पर कौन राज करते हैं सोच लेंगे, हम करते हैं या नहीं। बाबा जब बच्चों को आलस और अलबेलेपन में देखता है तो क्या करता है, हैं? करेगा क्या, अब ये सुधरते ही नहीं है तो मुस्कुराएगा, इनकी तकदीर ही ऐसी है, क्या करें अब इनको। ये थोड़ा ही भगवान उनको कान पकड़कर खींच के ले जाएगा, सवेरे नहीं उठते, अच्छा मैं सोने देता हूं तुम्हें, ऐसा तो नहीं करेगा ना। ये उसने राह दिखाई और राह पर चलना हमारा काम, प्रारब्ध हमें लेनी है। कितने सुंदर शब्द थे बाबा के, मेरे लाडले बच्चों, बोलो और मेरे आगे बोलो, दिल तख्त नशीन बच्चों, क्या करो, व्यर्थ से मुक्त हो जाओ। इतने प्यार से कौन पढ़ाएगा, लौकिक टीचर भी एक 2 बार पढ़ा कहेगा नहीं समझते, न रह जाओ कोचिंग में आना, ट्यूशन कर लेना, मेरे पास ही आ जाना घर, पैसे कमाने लगेगा। कितना प्यार करता है बाबा और हमें सुखी देखना चाहता है। जो कुछ वो हमें शिक्षा दे रहा है वो इसीलिए तो कि ये सब सुखी हो जाएं, ये सब महान बन जाएं, तो हम चर्चा करेंगे मेरे को तेरे में बदलने की। परंतु उससे पहले किन दो चीजों को बहुत महत्व दिया बाबा ने? संकल्प और समय। हम सब अच्छी तरह जानते हैं संकल्प ही सुख या दुख का कारण है, है या नहीं? संकल्प ही निराशा का या उमंग उत्साह का आधार है। संकल्प ही मनुष्य को महान बना देते हैं, संकल्प ही नीचे ले आते हैं। किसी को संकल्प आ जाए कौन पुरुषार्थ कर रहा, सब तो ऐसे ही है नीचे। और किसी को संकल्प आ जाए कोई कर रहा या नहीं कर रहा, मैं करूंगी, वो एकदम ऊपर चढ़ जाएंगे। हमारे संकल्प ही हमारे जीवन में सब कुछ जो होता है उसके आधार हैं। मैं अनुभव बताऊं एक का। कल ही एक लड़की आई, कहा मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रही। यूपीएससी माना जो कलेक्टर बनते हैं भारत में, एसपी कलेक्टर, जो बड़ी आईएएस आईपीएस बड़ी जो पोस्ट होती है। पर कहा मुझे बहुत कंफ्यूजन है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, मैं कभी निराश हो जाती हूँ, कभी होता है बाबा बैठा हो जाएगा, फिर निराशा आती है। कन्याओं को बहुत होता है ना एग्जाम देती है। मैंने उसे कहा पहले से ही आशा और निराशा के चक्रव्यूह में रहोगी तो सफल कैसे होगी? 5 लाख कैंडिडेट बैठेंगे, 5 लाख स्टूडेंट बैठेंगे एग्जाम में, 500 चुने जाएंगे। ये थोड़े 5 के 5 लाख चुने जाएंगे, केवल 500, 400, 450 जितनी सीट खाली होंगी। अब सारे ही सोचें कि मेरा नंबर आ जाए, संकल्प तो यही रखना है कि मेरा नंबर आ जाए। पर पहले से ही डर पैदा कर लेना, मुझे लगता है मेरा नहीं आएगा। उसने यही बोला, मुझे लगता है मेरा नहीं होगा। तो मैंने कहा तुमने तो निश्चित कर ही दिया अपना भविष्य। डर घबराहट बहुत सुंदर एक बात है, श्रीमद् भगवत गीता से भी है और बाबा ने भी सिखाई। पुरुषार्थ करना, मेहनत करना हमारा कर्तव्य और परिणाम वहां तो ये है, परिणाम मेरे हाथ में है, पर हमारे भाग्य के हाथ में, हमारा ड्रामा क्या है उसके हाथ में। तो हमेशा मनुष्य को ये सीख लेना चाहिए, हार जीत, लाभ हानि, सुख दुख, सफलता असफलता, ये सब जीवन में आएंगी। आएंगी या नहीं आएंगी? इनसे कोई नहीं बच सकता। ऐसा संसार में कोई मनुष्य नहीं होता जिसे सफलता जीवन भर मिलती हो, असफलता भी होती है। ऐसा कोई नहीं जिसकी महिमा सदाई हुई हो, ग्लानि भी होती है, अच्छे अच्छों की होती है। जो पहले नंबर की आत्मा, उसको भी बहुत सहन करनी पड़ी। कौन है वो? स्वयं ब्रह्मा और सरस्वती को भी। उसकी कहानी कम मालूम है लोगों को, लेकिन ममा को भी बहुत कष्ट लोगों ने देना चाहा बाहर, जयंती पार्टी होती थी। लेकिन आगे बढ़ने वाले आगे बढ़ते ही गए, और जिसको अपनी सत्यता में विश्वास हो उसे लोगों के कहने से रुकना नहीं चाहिए। क्या विचार है बहनों का? सही विचार है भाई लोग? जिसे अपनी सत्यता में विश्वास हो उसे किसी के कहने से निराश नहीं होना चाहिए। ये सब होगा, और हमारे साथ तो स्वयं भगवान है। विजय होगी ही, बहुत दृढ़ता रखनी है। पर मान लो न हो तो उसे स्वीकार करना, उसमें ही कल्याण है। जहां के लिए हम तैयार कर रहे थे वहां हमारा कल्याण नहीं था। हो सकता है वहां हमें बहुत कष्ट होने वाले हों, बाबा ने वहां हमें जाने नहीं दिया, ये भी तो हो सकता है ना। इसलिए बहुत चीजों को स्वीकार करना, मेहनत करते चलना, हिम्मत से आगे बढ़ते चलना है। समय का महत्व बहुत गहरी बात थी। चाहे एक सेकंड हो, मिनट हो, चाहे एक घंटा हो, उसका भी बहुत महत्व है। ये बात सभी ब्राह्मण हमेशा सुनते हैं, पर क्या होता है, थोड़ी खराब बात कह रहा हूं, 99% ब्राह्मण समय बहुत वेस्ट करते हैं। बाबा की बात सुनी और ख्याल आ, ठीक कहता है बाबा, और फिर वही चाल। जो मनुष्य समय को महत्व देता है, बोलो आगे, समय उसे बहुत महान बना देता है। जो मनुष्य समय की गति को, उसके इफेक्ट को पहचानता है, वो अनेक अवसरों को प्राप्त कर लेता है। और जो मनुष्य समय चूक जाता है, अभी आपकी ट्रेन जानी है 12:05 में, आप 1 मिनट चूक गए, 1 मिनट में तो 1 किलोमीटर आगे निकल गई, अब तो नहीं पकड़ी जा सकती। समय, ज्योतिष विद्या में तो समय मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, तो समय को समझना है। बाबा ने राज बताया, उस पे सबको ध्यान देना है। तुम्हारे एक एक सेकंड का कनेक्शन 21 जन्मों के साथ तो है ही, पूरे कल्प के साथ है। ब्रह्मा बाबा के साथ उसकी रॉयल फैमिली में सतयुग त्रेता में भी रहेंगे और द्वापर कलयुग में भी। कौन कौन रहेंगे? समान बनेंगे, ब्रह्मा बाबा की याद में नहीं, ब्रह्मा बाबा के समान बनेंगे। नंबर 1 स्टूडेंट, जिसमें कोई ईगो नहीं था, अहम नहीं, सबसे महान आत्मा, सबसे बड़े त्यागी, सबसे बड़े तपस्वी, कोई अहम नहीं। इसलिए शास्त्रों में भी उनको पता क्या कहा गया, शंकर को कहा गया, वो महादेव को, आदि योगी, पहला योगी वो ब्रह्मा ही है, सबसे बड़ा योगी। जब भी कोई बाबा के कमरे में यहां भी जाता था ना, तो बाबा को योग युक्त ही पाता था, इसलिए बात करने का होता नहीं था। योग युक्त हैं ब्रह्मा, उनके योग की तपस्या से संसार का कल्याण होता है, हुआ है। तो हम समय को महत्व दें, सोच लो अपने से, ये कोई और नहीं हमें सिखाएगा या कराएगा, ये खुद को खुद सीखना है, समय की वैल्यू को समझना है, उसे बहुत महत्व देना है, उसका फायदा उठाना है। एक एक सेकंड में हम जन्म जन्म का भाग्य बना सकते हैं। देखो, एक जन्म की बात नहीं, आप सोचो हमारा संगठन बहुत बड़ा है, इसमें कोई कैसे हैं, कोई कैसे हैं, संकल्प चलता है दूसरों को देख के, ये ऐसे हैं, फुर्सत नहीं करते, ढीले हैं, इनका क्या भाग्य होगा। लेकिन बाबा ने बहुत गहरी बात कही, 21 जन्मों की अनेक राजाई स्थापित हो रही है। अब राजा, एक ही राजाई में कितने पद होते हैं, एक ही राजाई में। अब देखो आप, अब की 20-25 साल की राजाई देखो, कितने तरह के लोग हैं भारत में, अब तो जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, लेकिन तब भी कितने तरह के लोग होंगे, अब विचार करो। कपड़े पहनेंगे हम सब देवी देवता, कपड़े कैसे बनते हैं, पहले क्या चाहिए नहीं पता, पहनते हैं मजे से बस, पहले धागा चाहिए। हमें याद है, हम बचपन में थे, कीड़ा होता था जो रेशम का धागा बनाता था, अभी भी होगा, अभी हम तो यहां हैं, हमें तो दुनिया का पता नहीं ज्यादा, लोग उसे मारने ही नहीं देते थे। तो सतयुग में ऐसी व्यवस्था होगी, धागे बनेंगे, धागे बनने के बाद कपड़े बुने जाएंगे, कपड़े के बाद सिलाई होगी, तो कारोबार चलेगा या नहीं, दुकानें होंगी, फर्स्ट क्लास बिजनेस होगा, चमकते होंगे, हीरे सब जगह, ये सब कारोबार करने वाले होंगे ना, कपड़े सिलने वाले भी होंगे, ये नहीं जो यहाँ सिलते वही वहां सिलेंगे, ऐसा नहीं। जिनका कपड़ों में ज्यादा मोह होगा वो कपड़े सिलेंगे, ठीक है या नहीं? कपड़ों में ज्यादा आसक्ति, तो समय बहुत इम्पोर्टेंट है। पहचाने इस समय के महत्व को। भविष्य की किसी को न भी पड़ी हो, कई लोग कहते हैं क्या लेना देना, क्यों इस टेंशन में जाएं, लेकिन वर्तमान सुख, परमात्म सुख बहुत ज्यादा मिलता है। अनुभव सभी को बोलो, खूब अनुभव होगा। परमात्म सुख के सामने सतयुग का सुख भी फीका ढीला है, इसलिए सुख को पाने के लिए अपने को व्यर्थ से बचाना है। व्यर्थ अगर चलता है तो क्या नुकसान होता है? और बताओ, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, व्यवस्था बिगड़ती है। भाई लोग बोलो, चुप बैठे हैं भाई, हैं? माइंड खराब होता है, ठीक का बोलो, शक्तियां विनष्ट होती है, बोलो, प्रारब्ध पर असर, पीछे वाले बोलो, हैं? कमाई करनी है तो व्यर्थ में खत्म हो जाती है। देखो, अगर व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं तो अच्छे संकल्प चलेंगे ही नहीं, सबसे बड़ा नुकसान। और अच्छे संकल्पों का सुख बहुत बड़ा है। और आजकल ये सभी को सावधान होना चाहिए इस बात को जानकर, आजकल जिनको व्यर्थ संकल्प ज्यादा चल रहे हैं वे कुछ ही समय में मानसिक रोगों के शिकार हो जाएंगे, हो रहे हैं। आज ही दो लड़कियां आई, यंग, अच्छी पढ़ाई पढ़ने वाली, कहा मन उदास रहता है, खुशी नहीं है, पढ़ने को मन नहीं है, काफी अच्छी एजुकेटेड, पढ़ने को मन नहीं करता है, लगता है जीवन कैसा है, मैं समझ गया। तो जो लंबा समय मोबाइल के चक्करों में या व्यर्थ संकल्पों में बह जाते हैं, ये हाल उनका होना। इसलिए मैं तो बार बार सबको भाई प्यार से कहता हूं कि मोबाइल वोबाइल से कुछ मिलने वाला नहीं है। लोग कह देते हैं कोरोना में मोबाइल से ही तो पढ़ाई हुई, वो अलग चीज, यूज करना अलग चीज, लेकिन इधर उधर चले जाना उसमें, वो गंदगी भी है, गंदगी का डब्बा है, इतना बड़ा डब्बा, ये होल भर जाए गंदगी से, किचरे का डब्बा भी है और उसमें बाबा का भी माल खजाना बहुत है। च्वाइस हमारी है, हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, लेकिन सबको सावधान होना चाहिए। अगर व्यर्थ का प्रवाह एक बार अनकंट्रोल हो गया तो समझ लें अब मानसिक रोगों के शिकार होना ही है। और जो मानसिक रोगों का शिकार हो गया वो जाएगा डॉक्टर के पास, और डॉक्टर देंगे दवाई। कैसी दवाई? सोते रहो आनंद से। बहुत केस आने लगे इन तीन चार दिनों में, कितने आए। मेरा भाई 3 मास से डिप्रेशन में है, उसको डर बहुत लगता था, डॉक्टर के पास गए हैं, अब सारा दिन सोता रहता है। मैंने कहा सोते रहो, डिप्रेशन होगा ही नहीं, किसको होगा जब सो ही रहे हैं, डर किसको लगेगा। भय संसार में बढ़ता जा रहा है, सब सावधान हो जाएं। इसलिए अपने भय को समाप्त करने के लिए, ये भय अब का नहीं है, कोई ये ना सोचे कोरोना से आ गया, आया तो है, पर ये भय है पूर्व जन्मों का, मनुष्य के पाप कर्म उसको डरा रहे हैं, विकारों का अति भोग उसको डरा रहा है अब। इसलिए सवेरे उठते ही और सोने से पहले 21 बार लिखना शुरू करेंगे, जिसको थोड़ा भी भय हुआ है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। उठते ही सीख लो सभी माताएं, डॉक्टर बन जाओ जरा, ज्यादा पढ़ाई नहीं पढ़नी पड़ेगी। क्या बताया मैंने, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और निर्भय हूं। कब लिखना है? उठते ही और सोते समय। सवेरे शाम नहीं, शाम तो अब भी है, सवेरा तो 6 बजे 7 बजे तक भी है, उठते ही, क्योंकि उस टाइम सब कॉन्शियस माइंड जगा है, दोनों टाइम अंतर मन जगा है, तो आपके अंतर मन में जो भय समाया हुआ है वो नष्ट होता रहेगा। बहुत ध्यान देना है, और अपने बच्चों को भी, वैसे बच्चे सुनेंगे तो नहीं किसी की, मोबाइल भी एक ऐसा व्यसन है कि वो सुनते नहीं हैं, लेकिन जितना हो सके उन्हें बचाना है। बहुत बच्चे हैं पढ़ाई में होशियार हैं, कहते हम तो छोटा मोबाइल रखते हैं, कभी मम्मी से बात करनी हो, बस बड़ा रखते ही नहीं, एंड्रॉइड फोन रखते ही नहीं जिसपे कुछ देखें, तो वो पढ़ाई में बहुत होशियार हैं, ऐसे बच्चे बहुत हैं। तो सभी को अपने बच्चों को सुरक्षित रखना भी है, और अगर बच्चे आपकी बात न माने, मैं एक चीज सिखा रहा हूं, सभी भाई बहने उसको सीख लेंगे, सवेरे उठकर जब आपका परिवार सोया हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सोए हो, आप अपने घर में 5 मिनट अच्छे वाइब्रेशंस फैलाओ। आते हैं कैसे फैलाएंगे? पिछली मुरली के एंड में बाबा ने कहा, सुख शांति प्रेम और खुशी के वाइब्रेशन संसार को दो। देखो कैसे, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, आप खड़े हो गए अपने घर में कहीं या बैठे हैं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, बाबा से किरणें आ रही हैं और मेरे मस्तक से निकलकर पूरे घर में फैल रही हैं। संकल्प कर देना हमारा घर प्यार का मंदिर बन जाए, रोज कर लो 5 मिनट, शांति की किरणें, मैं आत्मा शांत हूं, पीसफुल, बाबा से किरणें आ रही, मेरे मस्तक से नैनों से शांति किरणें पूरे घर में फैल रही है। संकल्प कर दो हमारे घर में संपूर्ण शांति कायम रहेगी। ऐसे ये सहज विधि है। और फिर जो बच्चे जिनसे आप मोबाइल छुड़ाना चाहते हैं, अति में जो हैं, उन्हें आत्मा देखकर संकल्प दो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम समझदार हो, बुद्धिमान हो, अभी तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना है, अपने कैरियर को सुंदर बनाना है, छोड़ दो। जब वो सोए हैं, अगर आप रोज ऐसा करेंगे, कुछ दिन में ही उनको तेज संकल्प होंगे, वही जो आप दे रहे हैं, छोड़ो, इसमें वेस्ट ऑफ टाइम है, बुद्धि भ्रमित हो रही है, एकाग्रता खत्म हो रही है। ये बहुत सुंदर तरीका है, आप सभी करेंगे, मैं इसको बार बार सिखा रहा हूं सब जगह, क्योंकि सब सीख नहीं पाते, सुनते ही भूल जाते हैं, इसलिए डर खत्म करने की विधि मैंने आपको बताई, और अपने अपने घरों को सुखदायी, प्रेम से भरपूर, शांति से संपन्न मंदिर बनाने के लिए ये सब रोज करेंगे। बोलो, हो सकता है 5 मिनट, ज्यादा नहीं, अगर 4 बजे मिस हो जाए तो 5 बजे, तो भी नींद आ रही हो तो 6 बजे, ठीक है, 6 बजे तक बहुत अच्छा होगा। सारा संसार सोया होता है ना, हमारे वाइब्रेशन बहुत पावरफुल्ली काम करते हैं। मेरे को तेरे में बदलना है। अब सभी आप चिंतन करेंगे, सबको चिंतन करना है, कौन कौन सा मेरापन मन को भारी करता है, फिक्रों में लाता है, फिक्र चिंताएं। एक बात मैं पहले कह दूं, कुछ लोगों को चिंता करने की आदत भी पड़ जाती है, छोटी छोटी बातों में चिंता, ज्यादा सोचना, परेशान होना, इससे बचना है। चिंता न हो हमें, ऐसा अपने में एक संस्कार डाल लो, कुछ भी हो रहा है होता रहेगा, ज्यादा होगा सब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं बाबा बैठा है सब ठीक हो जाएगा, हम बहुत भाग्यवान हैं, सब अच्छा होगा, ये संकल्प करके अपने मन को चिंता तो होती है थोड़ी बहुत, हल्का कर दो उसे, हल्की चिंताएं रह जाए तो उसका ज्यादा इफेक्ट दिमाग पर नहीं आएगा, नहीं तो इफेक्ट बहुत आ रहे हैं। अभी सभी चिंतन करें, कम से कम 10 बातें निकालेंगे, कौन सा मैं बोझिल करता है, भारी करता है, जिसको मेरे को तेरे में बदलेंगे तो बेफिक्र बादशाह बन जाए, कौन सा मेरापन हमें भारी करता है। भारी करने वाली बात, मैं जैसा कहूं वैसा ही सब करें, क्या सोचेंगे अब तेरे में कैसे बदलेंगे इसे, और आगे चलो। ये दूसरी पॉइंट हो गई, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है इसका क्या होगा, मेरा बच्चा थोड़ा कम बुद्धि का है मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा, होता है नहीं, आ जाए दो केस ऐसे ही, बच्चा बड़ा है काफी बड़ा लेकिन थोड़ा सा ढीली ढाली बुद्धि, माँ बहुत पैसे वाली और कोई नहीं, माँ और बेटा संकल्प उठ रहा मेरे बाद में इसका क्या होगा, आई मेरे पास, मैंने कहा यही तो कल बाबा ने बताया, इस मेरे को क्या करो, तेरा है तुम संभालना इसको, मैंने उसके बुद्धि के विकास की विधि बताई थोड़ी थोड़ी, थोड़ा सा कम, देर में कुछ भी सीखने वाला, लेट लर्निंग, तो ठीक, खुश हो गई माता जी। अब बताओ, और मेरी ये जिम्मेदारी है, बच्चों की शादी करनी है, हो नहीं रही है, मैं आजकल की बात सुना रहा हूं आपको, एक करंट समस्या कई परिवारों में, लड़की दो घर में बैठी है, शादी नहीं हो रही, समाज वाले हमें तंग कर रहे हैं, क्या करूं, चिंता रहती है, बोलो बोलो, प्रैक्टिकल समस्या है या नहीं, लड़की की शादी हुई थी घर वापस आ गई है, अब भाई और भाभी उसे तंग कर रहे हैं, मां दुखी हो रही बेचारी, क्या करूं। देखो ये सब केस मेरे पास आते हैं, मैं तो जानता नहीं, ये अभी अभी है, इसी ग्रुप के बता रहा हूं, छोटी छोटी आयु में डिवोर्स हो रहे हैं, छोटी छोटी आयु में, एक दो साल शादी हुई और अलग, बोलो क्या करेंगे इनमें, बाबा को दे दे शादी तुम कराओ, बोलो। बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं और हम सबको सीखना है कि इन सब परिस्थितियों में बेफिक्र बादशाह कैसे बने, बोलो जिसको उत्तर आता हो। राजीव तुम्हें तो शादियों का अनुभव नहीं है, फिर भी पूछ रहा हूँ, ये कुमार बहुत बैठे हैं, इन्हें तो पता ही नहीं, हमें भी नहीं पता, हम तो सुन सुन के अनुभव प्राप्त करते रहते हैं, चिंता होती है बहुत, प्रैक्टिकल चिंता की बात होती है। आज ये एक छोटी सी आयु की, उसकी एक ही लड़की 5 साल की, डिवोर्स हो गया, अब घर में भाई भाभी तंग कर रहे, बाप भी कहता है जाओ तुम भाई यहाँ न रहो, शादी करो कुछ भी करो, अब बेचारी परेशान। मैंने कहा कुछ नौकरी आदि कर सकती हो, नहीं। अब देखो प्रैक्टिकल समस्या उसकी, जिसे कोई साथ नहीं देता संसार में, अपने साथ नहीं देते, होता है ना यही, अपने साथ नहीं देते, अपनापन आजकल नहीं है, कई परिवार अच्छे हैं, लड़की आ गई भाई भी कहता है भाभी भी कहते हैं चलो रहो जब तक कुछ हो, रहो सुख से रहो यहाँ, ऐसे परिवार हैं। लेकिन ज्यादा परिवारों में भाई भाभी क्या सोचते हैं, हिस्सा लेगी अब ये, समस्या इससे की है। मैंने उसे कहा तुम उन्हें कह दो मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं लूंगी, मैं रहूंगी जब तक कुछ हो। इसमें आगे काम करेगा हमारा योग अभ्यास, ऐसा नहीं बाबा को सौंप दिया और हम कुछ न करें, बाबा को ये मन के बोझ दे दो, ऐसे केस में उसे सोचना है कि जिस रीति बाबा रखे उसी रीति आनंद में रहेंगे। वैसे भी केस होते हैं कि पहले परिवारों में बहुत सुख था, 20-22 साल तक लड़की घर में रही, बहुत सुखी रही, शादी हुई वहां भी बहुत सुख था, धन था अच्छा, अब बेघर हो गई है। तो क्या सोचना, मैंने बता दिया, हम बाबा के हो गए, भगवान के हो गए, जिस रीति वो रखे हम उसमें ही सुखी रहेंगे। बहुत धन था, सुख सुविधाएं थी, तो भी हम सुखी थे, और केवल दाल रोटी मिल रही है तो भी सुखी हैं। मन को चेंज कर दो, मन को चेंज करें, समझ रहे ना सभी। हमें ये मन की स्थिति, इसको मेंटलिटी कहते हैं, अब बनानी ही है, ताकि आने वाले समय में हम बहुत सारी समस्याओं का आराम से सामना कर सकें। जिन्हें कहा बहुत सहन करना पड़ा है जीवन में, अब ऐसी विधि बताओ जो सहन करना ना पड़े। आज के केस हैं सब, बोलो, बहुत सहन किया है जीवन में, अब ऐसी विधि बताओ जो सहन न करना पड़े। कौन सी विधि है? सहन किया वो भी अच्छा, भाइयों ने सताया वो भी अच्छा, ठीक है। अब कैसे सोचे ये? प्रैक्टिकल बात बताओ, बोलो। सहन करना, ध्यान देंगे इस बात पे, हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं, अपने मन को ऐसा शक्तियों से भरे, थोड़ा आगे बढ़ाएं कि हमें छोटी बातों में ऐसा न लगे कि बहुत सहन कर रहे हैं। बाबा उदाहरण देता था इसका, एक माँ, उसका बच्चा बीमार हो गया है, वो शायद रात जाग रही है, रोज रोज थोड़ा बहुत सो लेती है, उसको कुछ भी नहीं ठीक से मिल रहा, सर रात जाग रही है, क्या वो कहती है मैंने तुम्हारे लिए बहुत सहन किया? बताओ माताओं, लगता ही नहीं उसको कि मैंने सहन किया, मैं बहुत सहन कर रही हूँ, कैसी संतान पैदा हुई, दुर्भाग्यशाली, सारा सहन करना पड़ रहा मुझे, सोचती माँ? नेवर। तो ये मन की एक स्थिति है ना, कि कई मनुष्य इतने सेंसिटिव, इतने नाजुक हो जाते हैं कि उन्हें छोटी छोटी बातों में लगता है बहुत सहन करना पड़ रहा है। ऐसा बनाए अपने को कि चाहे बहुत बड़ा भी सहन करना पड़ रहा हो, लगे ही नहीं कि सहन करना पड़ रहा है। बड़ी बीमारी आ गई, कष्ट हुआ, पैसे नहीं थे, टाइम पे डॉक्टर भी नहीं मिला, कष्ट रहा कई दिन, जरूर सहन करना पड़ा। लेकिन अगर मनुष्य ये सोच ले, कड़ा हिसाब किताब चुकतू हो गया, हल्के हो गए, तो सहन करना लगेगा ही नहीं। गुलजार दादी की बात उनके साथ ही सुनाते हैं कि वो बाबा को कहती थी, ये लास्ट की बात है उसकी, कि मुझे चाहे कितना भी कष्ट हो जाए अब शरीर में, मैं पुनर्जन्म नहीं चाहती बाबा। तो बहुत समीप आत्मा थी ना, बाबा को उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ी। तो सहन करना हम अपना नेचुरल संस्कार बनाएं, और उसके लिए बाबा जो बहुत अच्छी बात हमें कहते हैं, उठते ही, जिसको ऐसा लगता है ना बहुत सहन करना पड़ा, जब से बहू आई हम तो सहन करते करते मर गए, कई बहुएं भी कहती है, इस सास के पास आके तो सांस ही अटक गई है। ये बात सवेरे उठते ही मैं सहनशीलता की देवी हूं। माताओं को ज्यादा होता है, बहनों को ये बहुत सहन करना पड़ा, क्योंकि नाजुक स्वभाव होता है, छोटी छोटी बातों को ऐसा फील करती हैं कि ज्यादा सहन करना पड़ रहा है। भाई लोग डंडे वंडे खा के भी खुश रहते हैं, ठीक है चले, हमने भी तो मारे थे अपने बच्चों को, कोई बात नहीं। मैं सहनशीलता की, बोलो हूं या नहीं? और दूसरा संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे पास बहुत बहुत ज्यादा सहन शक्ति है। देखना आपकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी। जैसे माँ के पास सहन शक्ति तो होती है ना, जब बच्चा बीमार है वो सारी रात जाग रही, वो सहन शक्ति काम कर रही है। और कहीं वैसा ही जगना पड़े, ट्रेन में जा रहे हो और कोई खराटे वाला जोर से खराटे ले रहा हो, सोने न दे कि क्या ट्रेन की यात्रा, सारी रात जगा दिया इसने, तंग हो गई मैं तो, होगा ना? संकल्पों का खेल। सहन शक्ति हमारे अंदर है, उसको हमें जगाना है। तो ये संकल्प, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, मेरे पास संपूर्ण सहन शक्ति है, हमारी सहन शक्ति को एक्टिव कर देगा। और एक संकल्प रख लो, सहन करना एक आनंद है, हमारी शक्तियां बढ़ रही हैं, जो सहन करेगा वही तो सुखी रहेगा, सहन करेगा वही तो सहनशाह बनकर रहेगा इस दुनिया में भी। लगे ही नहीं गर्मी है तो गर्मी है, नो प्रॉब्लम। बाबा को कहा करते थे, ब्रह्मा बाबा को, बाबा मई जून में बहुत गर्मी, अभी कोई सेवा का प्रोग्राम नहीं करेंगे। बाबा कहते थे किसानों को जाके देखो, धूप में गर्मी में काम कर रहे हैं अपने खेतों में, करते हैं ना डॉक्टर, कितने करते हैं। तो ये केवल एक फीलिंग है, इसको बदल दो तो मैं आने से भारीपन आएगा और बाबा को सौंपने से हल्के हो जाएंगे। हल्के ही नहीं होंगे, बाबा की मदद के पात्र बन जाएंगे। बाबा के सुंदर सुंदर शब्द हैं, जब बोझ लेने वाला बोझ लेने को तैयार है तो तुम देते क्यों नहीं। सोच लो सभी, जिसके सिर पे कोई भी बोझ हो, मन किसी बात से बोझिल हो, क्या होगा को चिंता सता रही हो, बाबा के हाथों में सौंप दो अपने को। गीत में बहुत अच्छे शब्द थे, जीवन डोर तुम्हारे हवाले, सौंपो। प्रैक्टिकल करना है, केवल ये गीत नहीं गाने, गीत तो भक्ति में भी यही थे। अभी जीवन सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, लेकिन बाहर आते ही फिर भार अपने हाथों में, गाने से काम नहीं चलेगा। सौंप दो पूरा, और जो वो चाहे वैसे चल के देखो, कुछ ही दिन चलने के बाद इतनी सुंदर हो जाएगा सब कुछ कि लगेगा वाह बाबा कैसे चला रहा है। तो चिंताएं बाबा को दे दें, बच्चों के भविष्य की चिंता बाबा को अर्पित कर दें, काम धंधों का फिक्र हो बाबा को अर्पित करें, पैसे की कमी हो ये संकल्प बाबा पे सौंप दे, हम तुम्हारे बच्चे, तुम्हें पालना करनी है, कितनी अच्छी करेगा बाबा, ये बहुत सारे अनुभव प्राप्त होंगे। और ये बात बाबा के महावाक्यों में बहुत ही आती है, हम अपने जीवन को अनुभवों की खान बना सकते हैं, इसे एक बात में मास्टरी कर सकते हैं। कोई बात आई, बाबा को सौंप दी और देखो बाबा क्या करता है। मेरे को तो इतने अच्छे अनुभव हैं पिछले 2 मास के, मुझे ये हो गया था डेंगू थोड़ा भारी, उसके बाद के जो अनुभव हुए बहुत आनंद होता है मुझे उन्हें याद कर करके। सचमुच बाबा के हवाले जीवन कर देने से, उसका आह्वान कर लेने से क्या क्या होता है, ये वंडरफुल अनुभव होंगे। इसलिए अपने जीवन को अनुभवों की खान बना दो। इसमें अच्छा होता है कि बाबा को दिया और फिर क्या हुआ इसको लिखें, लिखकर ही चाहे बाबा को दे दें, रात को, दिन में, कभी भी, और फिर उसका परिणाम प्रैक्टिकल में नोट करें। तो बहुत बहुत सुंदर अनुभव होंगे, जहां हम कुछ नहीं कर सकते बाबा कर रहा है, ये बहुत अच्छे अनुभव होंगे। चाहे पैसों की कमी हो, चाहे बच्चों के बारे में कोई दुविधाएं हो, चाहे बच्चे पढ़ाई लिखाई में ढीले हो, चिंता भी नहीं करनी है। मैं माताओं को लास्ट लाइन कह देता हूं, बच्ची या बच्चा पढ़ाई में ढीला है, माताएं थोड़ी दुखी रहने लगती हैं, मुझे तो इसको डॉक्टर बनाना था, अब ये तो पढ़ती ही नहीं है। याद रखेंगे जैसी जिसकी बुद्धि है, बुद्धि का लेवल जितना है उतना ही तो वो करेगा। अब जबरदस्ती किसी को मार मार के मुल्ला बना देना होगा ये? इसलिए थोड़ा अपने को हल्का भी कर दे और बोझ बाबा को भी दे दे। हल्का करना, कुछ बातों को स्वीकार करना, ये बहुत जरूरी है। तो सभी अच्छा संकल्प कर लें, भगवान हमारा साथी है, हमें कोई चिंता नहीं, हम बेफिकर बादशाह हैं। ओम शांति।
प्रभु।